يا علي مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 440، ریکارڈڈ بائی مہندی مومن.
اگر ایک آدمی دار السلام میں رہتا ہے और वो डोडोमा आया तो डोडोमा के अंदर दो पांच दस दिन ठहर के वापस अपने घर चले जाता है। आप लोग यहाँ से दरअसलम कुछ खरीदी के लिए काम के लिए जाते हो तो आपका ख्याल ये रहता है कि वापस घर जल्दी पहुँचे। हमारा असल मकान जो है वो असल मकान क्या है? इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अपने असल मकान को याद करो। हमको पीरों ने भी इस बात के लिए ध्यान खींचा है। ए जी आदम याद निरंजन निर्गुण आपे असल हमारा स्वामी तमें जुदा पड़िया है रूप मेहरा करो मोरा साईया अबरा शरण तुम्हारी। मौला मेरा जो रूप है वो तेरी असल से जुदा हुआ, मुझको वो जुदाई याद आती है। ये 50-60 का सारा गिनन फिर हसन कबीर दीन ने जो वेंती के अंदर लिखा है इसमें यही वो लिखते हैं, यही रुदन करते हैं कि मौला अब तू मुझे लेके जा, मैं चलते चलते थक गया हूँ। अपने आप को नारी रूप में पेश किया है क्योंकि खुदा ताला की आत्मा जो है खुदा परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, यूनिवर्सल सोल है, उसमें से हमारी आत्माएं हमारी रूहें उसमें से निकली हैं, इसलिए हमारी रूहें उसकी नारी है। नारी कहते हैं कि जो सेवा करे, नारी कहते हैं कि जो हुक्म माने। हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर स्त्री जो है वो अपने पुरुष की इबादत करती है। उस हिसाब को और थीम को लेके गुरपीर हसन कबीर दीन ने अपने आप को नारी रूप में पेश किया, फिर सदर दीन ने भी ऐसा ही किया है। तो पीर का कहना यह है कि या मौला मैंने तेरे से शादी की है, तू जान लेके आ और मुझको ले जा, मैं अभी एक कलयुग की कड़वी नजर में रह नहीं सकती। इसके अंदर मुझे डर है कि चोर लोग मुझे हैरान करेंगे। यहाँ चोर का मतलब क्या? यहाँ चोर का मतलब दुनिया की मोह ममता माया। कलयुग की आंखें खराब हैं कि इंसान दुनिया की ऐश आराम में पड़ के अपनी इबादत बंदगी भूल जाता है। हमारा ये जो रास्ता इबादत का है, ये जो हमारा बातूनी तरीका है, दुनिया में किसी और जगह नहीं है। है कुछ लोग क्रिश्चियनों में भी जो सुबह उठ के चर्च में जाके इबादत करते हैं, मुसलमानों के अंदर सुबह जाके नमाज पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अजान की आवाज आई, सिखों में हिंदुओं में ऐसे कुछ थोड़े से लोग हैं कि जो सुबह जाके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हमारा जो इस महदियों के अंदर परोड़िए 4 बजे उठ के एक घंटा आंखें बंद करके एक ध्यान के अंदर अपने मौला का ध्यान करना और उसकी सूरत को याद करना, अपने आत्मा को ऊपर उठाना, अपने अंदर रूहानियत पैदा करना, ये दुनिया में किसी और जगह नहीं है। ये आला दर्जे की जो चीज है ये हमारे पास है। और हजरत इमाम फरमाते हैं अगर तुमको ये शौक है कि तुम्हें अपनी रूहानी ताकत बढ़ानी है, तुम्हारी रूहानी स्पिरिचुअल साइड ऊपर उठे, ऊंची चले, तुम्हारे अंदर रूहानी ताकत पैदा हो, तुम रूहानियत को समझ सको, अगर तुम्हें ये शौक है तो सुबह की इबादत करो। मौला फरमाते हैं बैतुल ख्याल की इबादत लेना फर्ज में नहीं, तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जमाना था, साहब एनकरेज करते थे कि 16 बरस का लड़का होए लड़की होए उसको बैतुल ख्याल का बोल दे दो। वो जमाना और था, अब जमाना बदल गया। मैं एक दफा 67 की बात करता हूँ तो बम्बे के अंदर था, मौलाना हजरत इमाम बैतुल ख्याल का बोल देने के लिए आए तो साहब ने जो फरमान किए सफर वन के भी आप पढ़ो, 67 नवंबर के फरमान है बॉम्बे के। पहली दफा मौला के मुंह से यह सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे, चार आदमी तुमको खटले में डाल के लावे, तुम्हारी ऐसी बीमारी और कमजोरी की हालत हो गए तो भी परोड़ी आके इबादत करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि कभी तुम जमात खाने नहीं आ सकते तो घर पे भी इबादत करो, अगर तुम बीमार हो तो भी इबादत करो। लेकिन हजरत इमाम ने नवंबर 67 में फरमान किया, अगर तुम बीमार हो, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता तो चलो उस दिन तुम इबादत न करो। अगर कोई भाई प्रेग्नेंट है और उसके आखिरी दिन है, डिलीवरी की नजदीकी है, तो उस वक्त उस बेचारी को बहुत घबराहट होती है, बाबा फरमाया चलो वो भी इबादत ना करो। इतनी दया कर दी उसने, रहम कर दिया कि हमको गुनाहों से बचा लिया। लेकिन जो तंदुरुस्त हैं, खाते पीते हैं, हेल्दी हैं, उन्होंने इबादत इमाम के हुजूर में जाके खुद बखुद मांग के ली है। अगर वो भी सुबह इबादत ना करें तो इमाम के सामने वो सख्त गुनहगार है। और यह चीज अच्छी नहीं, इसलिए कि इमाम से किया हुआ वादा जब हम तोड़ते हैं तो हम गुनहगार बनते हैं, उससे हमारी रूहानी शक्ति और भी घट जाती है। जो लोग इबादत नहीं लिए, उन्होंने बैतुल ख्याल का बोल नहीं लिया, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। अच्छे इसलिए हैं, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं। लेकिन हम इबादत का बोल लेके, इमाम से प्रॉमिस करके, फिर भी जो हम सुबह इबादत नहीं करते तो दिनदारो हम गुनहगार बनते हैं, और इस गुनाह के कारण से हमारी रूहानी शक्ति और भी घट जाती है, और हम इबादत लेके उसमें से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते। हमको इबादत करनी ही चाहिए, इबादत में बहुत फायदे हैं। देखो मैं आज आपको थोड़े से दुनियावी फायदे भी समझाऊं इबादत करने से। और इबादत करने का तरीका यह है कि आप इस तरह बैठो कि कम में कम 20-25 मिनट, 30 मिनट एक हालत में बैठ सको, जाने मुर्दा पड़ा होवे, कोई तरह की हिलचाल बदन में ना होवे, यहां तक के सांस भी जो है वो एकदम स्लो हो जाती है। आदमी को कोई भी उसकी शरीर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं स्टिल होके बैठना चाहिए, बिल्कुल यानी पत्थर की मूर्ति पड़ी है। ये चीज जरूर हासिल करो, क्योंकि अगर एक आदमी का बदन हिलता रहता है, कभी इधर खुल जाता है, कभी इधर खुल जाता है, कभी पांव ऐसा करता है, कभी पांव ऐसा करता है, फायदे है। देखो मैं आज आपको थोड़े से दुनियावी फायदे भी समझाऊं इबादत करने से। और इबादत करने का तरीका यह है कि आप इस तरह बैठो कि कम में कम 20-25 मिनट, 30 मिनट एक हालत में बैठ सको, जाने मुर्दा पड़ा होवे, कोई तरह की हिलचाल बदन में ना होवे, यहां तक के सांस भी जो है वो एकदम स्लो हो जाती है। आदमी को कोई भी उसकी शरीर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं स्टिल होके बैठना चाहिए, बिल्कुल यानी पत्थर की मूर्ति पड़ी है। ये चीज जरूर हासिल करो, क्योंकि अगर एक आदमी का बदन हिलता रहता है, कभी इधर खुल जाता है, कभी इधर खुल जाता है, कभी पांव ऐसा करता है, कभी पांव ऐसा करता है, तो उसके ब्रेन के अंदर स्टिलनेस नहीं आती, इसके लिए ध्यान लगाने में तकलीफ होती है। हमारा ब्रेन जो है वो पानी के अंदर फ्लोट करता है, हमारे भेजे में पानी है और पानी के ऊपर अंदर बाहर सब पानी है आजू बाजू में, और हमारा जो ब्रेन है वो पानी में फ्लोट करता है। इसलिए जब तक कि हमारा शरीर बिल्कुल मूवमेंट के बगैर नहीं होता, तब तक कि वो पानी है ना, वो हिलता रहता है, और उसके हिलते रहने से हमारा ब्रेन भी हिलता रहता है और डिस्टर्बेंस होती है। शरीर को बिल्कुल स्टिल कर दो और फिर दो चार थोड़े से लंबे सांस लेके आप अपने बोल के ऊपर ध्यान लगाओ। अगर ध्यान नहीं लगता तो गुरप्रीत सदरदीन की एक टेक्निक है, इमीडिएटली ध्यान लग जाएगा। और वो टेक्निक ये है कि फरमाया कि तुम अपने सांस को जब अंदर ले लो तो उसको रोको, सांस रोको। जो ही सांस रोकोगे इमीडिएटली उसी वक्त बाहर के सब विचार बंद हो जाएंगे, थिंकिंग स्टॉप हो जाएगी। और उस वक्त 5-7 सेकंड जितना रोक के आप अपना बोल चालू करो, सांस लेना भी चालू करो, लेकिन आपका ध्यान सांस के ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान उस बोल के ऊपर होए। बोल का मकसद जो है वो नूर तक पहुंचाना है, और बोल का मतलब की भी हमको जानना चाहिए। मौला के साथ जो मिशनरीज होते हैं उनके ऊपर ये फर्ज है कि इमाम जब बोल दे के चले जाते हैं तो ये मिशनरी उनको बैठक सिखाते हैं, बोल का मतलब सिखाते हैं, और कोई क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। अगर किसी तरीके से आपको अपने इस बोल का मतलब पता नहीं तो हो सकता है कुरान शरीफ के अंदर जो खुदा ने अपने नामों का एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया है, शायद इनमें से आपको अपने बोल का मतलब मिल जाए। लेकिन यह लाजिम नहीं कि हजर इमाम कुरान शरीफ के इन नामों में से कोई एक बोल देवे। इमाम हजारों नाम जानता है और उसकी मर्जी होती जो वो बोल देवे। लेकिन अगर आपको अपने बोल का मतलब पता है तो दिनदारो उस मतलब को भी याद किया करो, ध्यान लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता इस बोल को याद करो। मगर न तो हाथ में तस्बीह होनी चाहिए, बहुत से लोगों की आदत है इबादत के अंदर भी वो हाथ में तस्बीह फिराते रहते हैं, तस्बीह खीसे में डालो, मुंह बंद हो गए लेकिन अंदर जीभ भी हिलनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल मेंटल एक्सरसाइज है। अपने ख्यालों और ध्यान के अंदर इस इबादत करने का तरीका अपने ही ख्याल से, अपने ही मकसद से, अपने ही मतलब से पैदा करो और मौला मदद करेगा। जो आदमी सुबह इबादत करता है उसका मन शांत रहता है, दुनिया के दुख उसको दुखी नहीं कर सकते, उसके मन में कोई बुरी खबर सुनने से डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती, वो आदमी शांत रहता है, मजबूत रहता है, उसके विचार बदियों बुराइयों की तरफ नहीं जाते, वो गुनाहों की तरफ नहीं जाता, बचता रहता है, उसकी याद शक्ति अच्छी रहती है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। आदमी के दिल में हर वक्त शांति भी होती है, खुशी भी होती है। इबादत करने से हमारी तंदुरुस्ती भी बढ़ती है, शारीरिक भी मानसिक भी। इबादत करने से इंसान के अंदर सदृढ़ता यानी स्टेबिलिटी पैदा होती है। इबादत करने से इंसान का कैरेक्टर अच्छा होता है, कैरेक्टर अच्छा होने से लोगों के अंदर उसकी इज्जत बढ़ती है। ये तो दुनियावी फायदे हैं, लेकिन रूहानी फायदे बेहिसाब हैं। रूहानी फायदों में एक तो यह फायदा है कि इंसान के अंतकरण के अंदर हर वक्त एक किस्म की खुशी रहती है और सिक्योरिटी रहती है। इंसान कभी अपने आप को अकेला नहीं समझता, उसके दिल में कभी कोई डर भय भीक नहीं होती, वो समझता है कि मैं अपने मौला के साथ हूँ, और वो हमा वक्त मौला के साथ अपना संबंध रखता है, कॉन्टेक्ट रखता है। जैसे कि एक टेलीफोन मौला के पास है, एक टेलीफोन हमारे पास है, और हर वक्त हम अपने मौला से बात करते रहते हैं। रूहानियत के अंदर वो आदमी मौला को अपने सामने रखता है, मौला की मोहब्बत पैदा होती है, मौला उसको चाहने लगता है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूहानी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। इन रूहानी शक्तियों के अंदर एक दिन ऐसा भी आ जाता है کہ امام اس کو اپنی بخشش دینی شروع کر دیتا ہے. مولانا حضرت امام فرمایا کہ جب خدا تم کو عبادت کے اندر کوئی چیز کی بخشش دے گا تو تم کو اس کی سمجھ بھی دے گا, تم کو اپنے من میں اس چیز کی خاطری ہوگی, تم اس کو اس طرح سے سمجھو گے جیسے دنیا کے اندر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہوئے عبادت میں ہم کو ایسی خاطری پوروک چیزیں ملتی ہیں, ہمارے دل کے اندر ڈھچو پچو وچار نہیں آئیں گے, ہمارے دل میں شنکا. ان روحانی شکتیوں کے اندر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ امام اس کو اپنی بخشیشیں دینی شروع کر دیتا ہے. مولانا حضرت امام فرمایا کہ جب خدا تم کو عبادت کے اندر کوئی چیز کی بخشش دے گا تو تم کو اس کی سمجھ بھی دے گا, تم کو اپنے من میں اس چیز کی خاطری ہوگی, تم اس کو اس طرح سے سمجھو گے جیسے دنیا کے اندر ہم اپنی کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہوئے عبادت میں ہم کو ایسی خاطری پوروک چیزیں ملتی ہیں, ہمارے دل کے اندر ڈھچو پچو وچار نہیں آئیں گے, ہمارے دل میں شنکا نہیں رہے گی, ہم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بعض آدمی کبھی مشنریز باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں مشنری صاحب مجھے بندگی میں ایسا ہوا ایسا ہوا, اس آدمی کو کچھ نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس کے دل کے اندر شنکا ہے, اور وہ شنکا کے کارن سے یا ناسمجھی کے کارن سے کچھ ہوتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا, تو وہ من میں یہ خیال کرتا ہے کہ شاید مولا نے مجھے کچھ بخشش دی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں جب تم کو بخشش دے گا مولا تو تم کو اس بات کے لیے ساتھ سمجھ بھی دے گا, خاطری بھی دے گا, تسلی دے گا, یقین دے گا, ایسا وشواس دے گا کہ تمہیں اس میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کیونکہ عبادت کی بخششیں ہیں نا وہ روحانی بخششیں, وہ عقل کے اندر سے نکل کے آتی ہیں اور انسان کو اس میں کوئی بھی طرح کی شنکا نہیں ہوتی, کوئی بھی طرح کی نہیں. یہ کامل یقین عبادت میں ملتا ہے. عبادت کی چیزیں کہیں نہیں جا سکتی, کہیں نہیں جا سکنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کے شبد نہیں ہے. انسان کتنا بھی عالم اور کتنی بھی اچھی بھاشا جاننے والا بن جائے تو بھی عبادت کے جو ایکسپیرینس ہیں آدمی اس کو بول نہیں سکتا, کیونکہ اس کے لیے دنیاوی شبد کام نہیں کر سکتے. گرتی صدر دین فرماتے ہیں کہ جیسے ایک گونگا آدمی ہوئے جو بول نہیں سکتا ہے, اگر اس کو کوئی بہت اچھا سپنا آ جاوے کہ جس کی خوشی کا پار نہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا سپنا بتاوے لیکن بول نہیں سکتا. تو پھر صدر دین کہتے ہیں عبادت میں تمہیں جو چیزیں بخشش ملیں گی وہ ایسی ہوئیں گی کہ تم بول نہیں سکو گے, وہ اندر ہی سمجھنے کی چیزیں ہیں, اور انسان اس کو اپنے مولا کی طرف سے سمجھ بھی پاتا ہے. سدنگارو پھر کہتے ہیں کہ جب ہی 6 گھڑی دن باقی رہے, رات باقی رہے, دن اگنے کے اندر ٹائم باقی رہے تو تم اس وقت اٹھو. 1 گھڑی 22.5 منٹ کی ہوتی ہے اور 8 گھڑی کے 3 گھنٹے بنتے ہیں, لگ بھگ 2.5 گھنٹے پہلے تم اٹھو اور اپنے مولا کو یاد کرو, اپنے الکھ کے ساتھ اپنا سبند لگاؤ, اس کو ٹیلی فون کرو کہ یہ مولا ساری دنیا سوئی ہے, کارخانے بند ہیں, ٹریفک بند ہے, دکانیں بند ہیں, لوگ سو گئے ہیں, چوکی دار بھی سو گئے ہیں اور کترے بھی سو گئے ہیں, لیکن میں اٹھ کے میں تجھے ٹیلی فون کرتا ہوں مولا, اس لیے میرے دل کے اندر تیری محبت ہے یا مولا, اور یہ محبت اس لیے ہے کہ تو مجھے چاہتا ہے. جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے, جب خدا کسی پہ خوش ہوتا ہے اور اس کو کوئی بخشش دینی چاہتا ہے تو خدا اس کے دل میں اپنی پریم پیدا کرتا ہے, اس کو توفیق دیتا ہے کہ خدا کو وہ یاد کرے. رابعہ بصری ایک بہت بڑی بزرگ پائی ہوئی, بڑی عابد تھی, بڑی سٹوریز اور کہانیاں ہیں اس کی. وہ کبھی کبھی گفتگو کے اندر بولے خدا میرے پہ بڑا راضی ہے, तो किसी आदमी ने पूछा, अम्मा तेरे को कैसे पता लगा कि खुदा मुझ पे तुझ पे राजी है? तो कहने लगी, इसलिए कि मैं खुदा से राजी हूँ। पहले खुदा मुझ पे राजी होता है तो फिर मेरे दिल में उसके ऊपर राजी होने की तमन्ना पैदा होती है। जब हम खुदा को याद करते हैं ना, या हमारे मन में आता है कि मैं खुदा को याद करूं, तो ये यकीन मानो कि खुदा ने आपको याद किया है, इसलिए आपके दिल के अंदर टेलीफोन की घंटी बजी, उसने नंबर मिला दिया आपका। मौलाना रूमी लिखते हैं कि इश्क दर्द दिले माशूक पैदा में शवर। इश्क जो है सबसे पहले माशूक के दिल में पैदा होता है। माशूक कहते हैं जिसको हम चाहते हैं, बल्कि अपने जीवन का एम उसको हमने बना लिया, वो हमारा एम बन गया, हमारी मंजिल बन गया। तो हमारी मंजिल मौला पापा है, उसका नूर है। वो कहता है कि इश्क अव्वल दर्दले माशूक पैदा निशवत। फिर दलील देते हैं, ताना सूजद शमा कै परवाना शायदा निशवत। कहते हैं कि अगर मीनबत्ती शमा न जले तो परवाने किसके ऊपर अपनी जान देवे। परवाना जान देवे उसके पहले शमा जो है वो जलती है, वो दुख उठाती है, उसके बाद परवाना खुद दुख उठा के अपनी जान कुर्बान करता है। तो खुदा ताला जब किसी पे राजी होता है तो उसको दिल के अंदर ये तौफीक डाल देता है कि वो उसकी इबादत करे। खुश नसीब है वो लोग कि जो परोड़िए उठ के मौला को याद करते हैं। रात को सोने से पहले ही उनके दिल में नियत होती है कि मैं उठूं, सुबह मुझे उठना है, याद करना है, या मौला मेरे को उठाना। वो इस किस्म की मौला की याद करके ही सोते हैं और सुबह उनकी आंख खुल जाती है, उनको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती, किसी के उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। परोड़िए की इबादत हमारा फर्ज है, क्योंकि हम इमाम का दिया हुआ रिज़्क खाते हैं और हमारी उस दुनिया की जिंदगी का मकसद और मंजिल है, वह हमारा डेस्टिनेशन है, वहां हमको पहुंचना है। कुरान शरीफ की एक आयत के लिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, सारे कुरान का सबसे बड़ा जो मकसद है तो वो इस एक आयत में आ गया। मौला कहते हैं आयत में है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई शख्स गुजर जाता है तो इस्लाम के अंदर सुनने वाला ये बोलता है, जब उसको खबर मिले कि कोई शख्स गुजर गया तो मुसलमान कहते हैं इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, हम खुदा के लिए हैं और हमको वापस उसके पास जाना है। ये है मकसद हमारे जीवन का, हम इस दुनिया में थोड़े टाइम के लिए आए हैं, हमको वापस मौला के पास जाना है। बस आबिदों के अंदर ये समझ होती है, आबिद हर वक्त इस ख्याल में रहता है मुझे उस मौला के पास जाना है। वो दुनिया के अंदर इस तरह से रहता है। इमाम फरमाया कि जैसे एक मुर्गा भी, इंग्लिश में सी गल कहते हैं मुर्गा भी को, समुन्दर के अंदर ये मुर्गाबियां रहती हैं, लेकिन उनके पंख हमेशा सूखे होते हैं, उनके पंख के ऊपर पानी टिकता ही नहीं। मौला फरमाया मोमन दुनिया में मुर्गाबी की तरह रहता है, उसके पंख गीले नहीं होते। तुम दुनिया में रहो, खाओ पियो, बीवी बच्चे, नॉर्मल जिंदगी, बिजनेस वगैरह सब कुछ करो, लेकिन दुनिया तुम्हारे ऊपर असर न करे, मोमन इस तरह से दुनिया में रहता है। तो खुदा ताला के पास सारा सारा दिन दुआएं मांगते रहो, याद करते रहो, उसके जिक्र में रहो। मौला फरमाया कोई ना कोई नाम अपने दिल के अंदर रटन करते रहो, हर वक्त उसके साथ कॉन्टेक्ट रखो, तो इंशाल्लाह दुनिया की बदियों बुराइयों से और शैतान और आफतों और बलाओं से हमेशा बचते रहोगे, वो चीज़ें आपके नज़दीक नहीं आएंगी। मौला फरमाया भले दुनिया में तुम्हें प्रॉब्लम आएंगी, दुनिया में तुम्हें दुख आएंगे, लेकिन तुम कभी दुखी नहीं बनोगे, इसलिए कि तुम्हारे अंदर रूहानी ताकत होगी और दुखों का सामना करने की शक्ति होगी। मौला आपको सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, عبادت کا شوق دے دے, مولا اپنی محبت دے دے, رسول سکریت میں پورا رکھے, مولا فرمان بردار مومن بنائے, شیطان کے فریب سے دور رکھے, مولانا حضر ایمان ہر وقت ہمیں نیک توفیق دے دے اور اچھے پوتر ویچاروں کے ساتھ اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے دے, زار بات دیدار نصیب کرے.